हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 वर्स नंबर 14। भगवान अत्यंत ही सुंदर शब्दों में आज अपनी दिव्यता का बखान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सभध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सभध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सभध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सभध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सभध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सभध्यते। शब्दों का अर्थ, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, न मतलब नहीं, माम यानी मुझे, कर्माणि यानी सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, नमे कर्म फलस्पृहा, न मतलब नहीं, मैं मना मेरी, कर्म फले यानी सत्काम कर्म में स्पृहा अर्थात महत्वाकांक्षा। इति माम यो भी जानाते, इति माना इस प्रकार, माम यानी मुझे, यो यानी जो, अभी जानाति अर्थात जानता है, कर्म भिर न सबध्यते, कर्म भिर अर्थात ऐसे कर्म के फल से, न यानी कभी नहीं, सह यानी वह बध्यते अर्थात बंध पाता है। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, कृष्ण कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीव आत्माएं भौतिक कार्यकलापों के सत्काम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीव आत्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्र तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं होती। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति के इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्तमात्रमेवासौ सृच्यानां सर्गकर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वै सृज्य शक्तयः। अर्थात भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने से बाध्य होती हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2.1.34 पुष्टि की गई है कि वैष्म्य नैर्धण्य न सापेक्षत्वात्। अर्थात भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीव आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। आज भगवान अत्यंत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, भले ही मैं समस्त सृष्टि का कर्ता हूँ, परंतु नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, जितने भी कर्म हैं वो मुझे कभी भी प्रभावित नहीं करते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 22 में बहुत ही सुंदर बताया। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैं इतना दिव्य हूँ कि मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि भगवान समस्त नियंताओं के भी नियंता है। तो भगवान को ना किसी से किसी चीज की आवश्यकता है और ना ही किसी चीज की इच्छा है। तो भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं फिर भी तीनों लोकों में मेरे कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने कार्य करता हूँ। और उसके बाद भगवान ने चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 9 में बताया कि भले मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जन्म लेता हूँ और कार्य करता हूँ। परंतु जन्म कर्म चने दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः, लेकिन मेरे जो कार्य है और मेरा जन्म लेना वो सब दिव्य है, और जो ऐसा तत्व से जानता है उसके लिए समस्त बंधन टूट जाते हैं। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति, जब वो देह को त्यागता है तो दूसरा जन्म नहीं लेता। मामेति सर्जुना, अर्जुन मेरे पास आ जाता है। और आज भगवान इसी प्रकार से एक बात बता रहे हैं, जैसे पहले कहा कि मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, और आज भगवान बोल रहे हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कि जो कार्य मैं करता हूँ उसके अंदर मुझे कोई आसक्ति नहीं होती है, और वो कार्य मुझे प्रभावित नहीं करते हैं, और ना ही कर्म फले स्प्रिहा, मुझे किसी भी कार्य के फल की इच्छा नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है। और इति माम यो भी जानन्ति, जो इस प्रकार से मुझे जानता है, खाली इतना जिसको ज्ञान हो जाता है, वो भी कर्म भेर न सबध्यते, अपने कार्यों में कभी भी उसको बंधन नहीं होता है और अपने कर्म के बंधन से छूट जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाया कि जिस प्रकार राजा होता है वो नियम बनाता है कि यदि कोई किसी की मृत्यु किसी को मार देता है तो फिर राजा उसको दंड देगा या फिर उसको भी फांसी पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन भले राजा ने ये नियम बनाया हो, लेकिन राजा जब किसी को दंड देता है स्वयं, तो उसके बदले में राजा को नहीं मारा जाता है ना, राजा नियमों के अधीन नहीं रहता है। उसी तरह यद्यपि भगवान भौतिक जगत के सृष्टा है, भौतिक जगत में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भगवान के आज्ञा के अनुसार है, परंतु वो भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। भले ही संसार में भगवान ने समस्त चीजों की सृष्टि की है, लेकिन वो भगवान जो है वो इस सृष्टि से बिल्कुल पृथक है, और जितनी भी जीव आत्माएं होती हैं वो सृष्टि के नियमों से बंधी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जितने भी जीव आत्माएं हैं, वो प्रकृति के साधन जितने भी हैं, उन पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति रखती हैं। लेकिन वास्तव में प्रभु भगवान है। अगर भगवान सृष्टि पर प्रभुत्व जता रहे हैं तो वो उनका अधिकार है, और समस्त जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो तो भगवान की दास हैं। तो जैसे किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे के कार्य के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता, जैसे अगर कोई राजा होता है तो जो कार्य करने वाले हैं, जितने भी लोग हैं वहां पर, वो अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, वो राजा भले उसने सुविधाएं प्रदान की है संसार, मतलब यहाँ पर रहना, और उसके बदले में उसके अलावा भी जो भी अपने राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से एकदम अच्छे तरीके से बनाया है, पूरा हर चीज प्रोवाइड की है, लेकिन उस राज्य में अगर कोई कर्मचारी जो है या कोई उसका राज्य का जो कर्म करने वाला है या जो कर्मचारी है वो अगर कोई अपराध करता है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उसकी बली में राजा भी दंडित होगा। राजा तो उससे अलग ही है ना, जिस प्रकार वर्षा होती है, तो अब किसी ने आपने यदि आम का पेड़ लगाया है तो वर्षा तो हो रही है तो उसमें से आम उगेंगे। यदि किसी ने कोई नशे की चीज लगाई है, किसी ने जहर का पौधा लगाया है, तो इसमें वर्षा का क्या दोष? तो इसी तरह से भगवान कर्मों, जो भी जीव का कर्म होता है, उन कर्मों का उत्तरदायित्व भगवान पर नहीं होता है। भगवान कभी भी अपने कर्मों के फल नहीं चाहते हैं, ऐसे कर्मों में कभी लिप्त नहीं होते हैं। इस संसार में बहुत सारे प्राणियों की योनियां हैं, जैसे मनुष्य हैं, देवता हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तो वो सब अलग अलग देव ये जो योनियां किसी को इस संसार में जीव आत्माओं को अलग अलग योनियां जो मिली हैं वो किस लिए मिली हैं? क्योंकि पूर्व शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए हम बाध्य हैं। हम आज जो भी कार्य करेंगे तो हम उसको उसके परिणाम को भोगेंगे। और फिर भगवान क्या करते हैं, हमें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे 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 अब मैंने कोई अपराध किया है तो उसके अनुसार ऐसा ऐसी योनि प्रदान करते हैं और ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं कि हम उन अपने अपराधों को भोग सके, अपराधों के परिणाम को भोग सके, किंतु वे उनकी किसी भी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। वो उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप यहाँ पर आप भोग सकते हो। अब जैसे हम मनुष्य बने हैं, हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत बहुत अच्छे कर्म करने के बाद किसी को मनुष्य की योनि मिलती है, और मनुष्य योनि में भी किसी को गुरु मिलना, शास्त्र मिलना और भगवान की भक्ति, भगवान की विग्रह का स्पर्श करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसाद खिलाना, उनका उच्चिष्ट खाना, भक्तों का संग, भगवान के पवित्र नाम का जप, कोई साधारण बात नहीं है। ये हमें इतनी सुलभता से, इतनी सरलता से प्राप्त हुआ है। लेकिन आज भी यदि हम भगवान के नाम के जप के अतिरिक्त भगवान को टाइम नहीं दे रहे, यानी कि अब सुविधा तो हमें सब कुछ मिली है, जैसे हमारे घर में जितने भी लोग हैं तो उनको ये सब सुविधा है ना, भगवान के सानिध्य की, भक्तों की सेवा की, और ये सब मिला। लेकिन यदि अगर हम लोग नहीं करते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूसरी फिजूल चीजों में लगाते हैं, जैसे टीवी में, कंप्यूटर में, अलग अलग है ना, और ड्रामास देखते हैं और वीडियो मूवीज लाके देखते हैं, उसमें समय बिताते हैं, तो भगवान कोई थप्पड़ मार के नहीं बोलेगा कि मैंने आपको इतनी अच्छी सुंदर सुव्यवस्थित जीवन दिया है, इसमें तो आप इंस्टेंट मुझे पा सकते हो। रोजाना क्या करना है तुमको, जप करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, और है ना प्रसाद अर्पण करना है, मेरी सेवा करनी, और तुम इतने थोड़े से जीवन के अंदर मुझे समय ना देकर फिजूल टाइम अपना सारा जाया करो। तो भगवान उत्तरदायित्व नहीं है। भगवान ने आपको आपके कर्मों के अनुसार ये प्लेटफॉर्म दे दिया, अब जैसा आपकी इच्छा, भगवान ने टोटल फ्रीडम दे दिया कि जैसा आपकी इच्छा है वैसी करो। और ना ही किसी से भगवान पक्षपात करता है कि भाई आपने ना, मैं उसको किसी तरह से ज्यादा प्रोवाइड करूं, जितना आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलना है उतना ही मिलेगा। और फिर जीव आत्मा जो अपने कार्य करते हैं उनके लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। और सिर्फ यहाँ पर भगवान कहते हैं इतिमाम यो भी जानाति, जो भगवान के इस नियम को, इन नियमों को, कि भगवान ने किस तरह से ये सारी योनियां बनाई हैं और कर्म के अनुसार किस किस योनियों में क्या क्या सुविधाएं उनको प्राप्त कराई हैं, ये सब भगवान का ये खेल है। तो भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्प्रहा, मैं कर्मों में लिप्त भी नहीं होता हूँ और के फलों कर्मों के फलों में मेरी आसक्ति भी नहीं है। इतिमाम यो भी जानाति, जो मेरे इस दिव्य स्वभाव को जानता है, जो मेरी इस दिव्य कर्म की और मेरी दिव्य अवस्था को जानता है। कर्म भिर्न सब बद्ध्यति, अर्थात जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित हो जाता है कि कृष्ण जो है वो वास्तव में वो भौतिक जगत के नियमों के अंदर बाध्य नहीं है, वो कृष्ण अलौकिक हैं, कृष्ण दिव्य हैं, और कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने पर मुझे भी दिव्य पद प्राप्त होगा। जो भगवान की रियलिटी को समझते हैं वो क्या करेंगे, वो भौतिक आसक्ति को छोड़कर भगवान, क्योंकि किसी को पता चल जाए कि कृष्ण इतने दिव्य हैं कि उनके साथ संबंध जोड़ने से मैं भी भौतिक कर्म बंधन से छूट जाऊंगा, मुझे भी बारंबार जन्म मरण के चक्कर में नहीं बसना पड़ेगा, मुझे भी समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो भगवान की शरण में आएगा, भगवान की शरण में आकर वो अपना आप भगवान को समर्पित करेगा और फिर भगवान के पवित्र नाम का जप करेगा, यानी कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और जो इस तरह से भगवान को दिव्य जानकर अपने आप को भगवान के समर्प भगवान की शरण में आता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कर्म भेद न सबद्यते, उनको भी उसको भी कर्म के बंधन में नहीं बनना पड़ता, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म कर्म फल के लिए होते हैं। वो फिर यही सोचेगा ना कि ना जैसे हम लोग भी कर्मों के फल के बंधन, जैसे कल हम लोग कोई बोल रहा था कि बाली जो है भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छुपकर बाली को तीर मारा, उसके बदले में बाली ने दूसरे जन्म में जरा शिकारी के रूप में कृष्ण के पैर में तीर मारा। ऐसा नहीं है, भगवान बंधन में नहीं फंसता। भगवान जो करता है वो अपनी लीला करता है, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करता है, भगवान को अपने कर्मों का बंधन नहीं लगता। और इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है, जो भगवान को ये जानता है कि भगवान के कभी भी कर्म फल में लिप्त नहीं होते हैं, वो कर्म बंधन से छूट जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि भगवान भी कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं भगवान को भी, और भगवान भी कर्मों के बंधन में बंधते हैं, तो श्री प्रभुपाद ने साफ साफ बताया कि वे निश्चित रूप से कर्म फलों से बंध जाएंगे। वो कभी भी जो भगवान को जैसा समझता है, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, तो मुझे जैसा समझोगे मैं वैसा ही तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। तो फिर भगवान को यदि हम कर्मों के बंधन में बंधा हुआ समझते हैं, तो भगवान भी हम भी कभी अपने कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकते हैं। और जो भगवान को परम सत्य समझता है, जो समझता है कि भगवान समस्त कारणों के कारण होते हुए भी इन भौतिक कार्यकलापों से कभी लिप्त नहीं होते हैं, और भगवान की दिव्यता को जो समझता है, वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की शरण में आता है। और जो भगवान की शरण में आता है, भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयी श्यामि मासुच, मैं उसे समस्त पापों से छुटकारा दिला दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।